दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
ओम शांति। अभी हम आदरणीय रमेश भाई जी से कल की मुरली के बारे में उसका विश्लेषण, उसके गुह्य राज्य बहुत तन्मयता से सुन रहे थे और भाई साहब ने पूरी मुरली का सार बताया कि स्नेह की, प्रेम की मुरली थी। पूरी मुरली का सार ही प्यार के ऊपर था और साकार ब्रह्मा बाबा वास्तव में उसी प्यार की ही प्रतिमूर्ति थे। कहा तो परमात्मा के लिए जाता है शिव बाबा के लिए कि वो प्रेम का सागर है, लेकिन वो प्रेम दर्शाए कैसे, क्योंकि वो तो निराकार है। तो जब पूरे कल्प में संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेता है शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही प्रेम का प्रदर्शन बाबा के द्वारा होता है। हमें याद आता है साकार बाबा से जब कोई भी मिला करते थे, बस बाबा के सम्मुख आते थे, प्रेम से बाबा ऐसे हाथ बढ़ा देते, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, और बस इन शब्दों में और इस पोज में ऐसा जादू होता था, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता था कि बाहों में खींच करके स्वतः ही बच्चे आ जाते थे। जैसे ही कोई बच्चा बाबा की बाह में आता था, हमारा अपना भी अनुभव है, जब मिले तो तुरंत ही बिना किसी प्रैक्टिस के, अभ्यास के, विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, क्योंकि बाबा के नैनों में इतना आकर्षण और बाबा का इतना अभ्यास। आप सबको भी मालूम है बाबा ने कितना अभ्यास किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला, जसोदा बाबा की युगल का नाम, नारायण बेटे का नाम, आदि आदि पक्का। तो जैसे ही कोई बाबा के सम्मुख आता था, बाबा दृष्टि देते थे, वो आत्मा भी जैसे अपने अशरीरी, विदेही, देही अभिमानी स्वरूप में स्थित हो जाती थी। तो एक तो ये बाबा ने जो अभ्यास किया था, हुआ था, ये दूसरे को भी थोड़े समय के लिए अशरीरी बना देता था और थोड़े समय बाबा की बाह में रह के फिर बाबा ऐसे प्यार से थपथपा के, आओ बच्चे, हाँ आओ। कोई आत्मा जाती नहीं थी शरीर छोड़ के, लेकिन जैसे अशरीरी स्थिति का अनुभव होता था, फिर बाबा जैसे उसका धीरे धीरे प्यार से आवाहन करते थे, हम लोग शरीर में जैसे फिर आते थे। कहने में तो यही आएगा, आते थे यानी कि वो विदेही अवस्था से देह की स्थिति में, और फिर बाबा हाथ से टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, बहुत प्यार से थपकी देते। बाबा का वो स्पर्श ही ऐसा इलेक्ट्रिफाइंग था कि बस बाबा की गोद से निकलने की दिल ही नहीं होती थी, ऐसा महसूस होता था कि बस इसी गोद में हमेशा के लिए पड़े रहे। समझ सकते हैं जिस तन में भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसके लिए पूरी दुनिया कहाँ न कहाँ ढूंढती है, वो जिस तन में बैठा हो, जिस तन में आता हो, उस तन का स्पर्श भी कैसा होता होगा, उस तन की दृष्टि, वाइब्रेशन, ऑरा कितना शक्तिशाली होता होगा, ये आप समझ सकते हैं। फिर एक निकल के जाता था, दूसरा आता था, उसको भी यही अनुभव होता था। इस तरह पूरी पार्टी वन बाय वन मिला करती थी। तो ये बाबा का किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी आध्यात्मिक जर्नी में स्पीड देने का पहला स्टेप होता था। ज्ञान में तो चलते थे कुछ मास से सब लोग, और लेकिन जैसे ही बाबा से मिलते थे उसमें इतना बूस्टिंग हो जाता था, इतना वेग आ जाता था उसके पुरुषार्थ में कि बस वो अपनी जीवन को सहज ही रीति से बाबा की सेवा के, ज्ञान के, योग के बस हवाले कर देता था। तो बाबा शुरू में जब उस समय हमें याद आता है 61-62 की बात है ये, तो बाबा से जो भी मिलता था बाबा उसको उसका पुराना जीवन भुला देना चाहते थे पूरा, और ज्ञान युक्त रीति से। हमें याद है जब बाबा से पहली बार मिले, बाबा ने कहा, पूछा क्या नाम है बच्चे, हमने अपना लौकिक नाम बताया, हमारा नाम श्री, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होता है ना, ये श्री नाम था। तो फिर बाबा ने पूछा, फिर हमने और बताया तेजी से, आवाज थोड़ा बढ़ा करके, तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे श्री, ओह कितना ह्यूमरस बाबा का, क्योंकि इसीलिए ही बाबा देखो केवल 33 वर्ष में ही संपूर्ण बन गए। 1936 में ज्ञान हुआ 37 में, और 1969 में संपूर्ण बन गए। क्यों? क्योंकि हरेक को यह एहसास होता था कि बाबा मेरा है। बच्चा हो बच्चे का अनुभव, यवान हो जवान का अनुभव, अधेड़ अवस्था का हो उसे वैसा अनुभव कि बाबा मेरा है। वृद्ध को वृद्ध जैसा अनुभव। उस समय हम तो 16-17 साल के थे, बस ये बोला नाम श्री, बाबा ने उसी लहजे में, अरे आओ दादी आओ दीदी आओ 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 कुमार का आओ, बस ऐसे लहजे में कि बच्चे देखो दादी आज बाबा को ऐसा बच्चा मिला जो बाबा से भी ऊंच है, ऐसा हो सकता है? हा? कोई नहीं। भाव क्या था कि बाबा ज्ञान से उस हर चीज का रहस्य करते थे कि देखो बच्चे श्री तो अभी कोई लगा नहीं सकता, ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम में श्री नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवताओं के आगे श्री लगता है, और श्री उनको लगता है जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी न तो किसी की आत्मा पवित्र है और न शरीर, तो इसलिए अभी तुम्हारा नाम श्री नहीं, श्री जैसा बनना है। देखो ये बाबा भी पुरुषार्थ कर रहा है श्री जैसा बनने का, आत्मा भी पवित्र बनाने का, प्रकृति के 5 तत्वों का से बना ये शरीर इसको भी पवित्र बनाने का, इसीलिए अभी तुम्हें श्री जैसा बनना है, तो बाबा आज से तुम्हारा नाम मोहन देता है। तो तब से लौकिक नाम भी बाबा ने जैसे बदल के मोहन कर दिया। तो भाव क्या है कि हर चीज में बाबा पुरानी बात को भुला के नया। किसी का नाम माया देवी होता था, बाबा कहता था अरे अभी माया का क्या काम, अभी तो भगवान मिल गया, नाम बदल देता था। तो एक तो हम लोग भी जो बाबा जैसी कर्मातीत अवस्था को पाना चाहते हैं, हम ये देखें अपने अंदर झांकें कि जब से मेरा ये आध्यात्मिक जन्म हुआ है तब से मैं कितना अपने पुराने देह को पुराने संबंधों को कितने तक मैं भूला हूं, और कितना मैं महसूस करती हूं आत्मा कि मेरा नया दिव्य अलौकिक जन्म है। ये पुरानी बातें जैसे सब खत्म हो जाए। तो एक बाबा ये हम बच्चों से चाहते हैं, जिसने बाबा को इतनी जल्दी कर्मातीत बना दिया। बाबा भी भूल गया, सब जानते हैं हीरे जवाहरात के व्यापारी कितने बड़े, समाज में कितना ऊंचा स्थान, सब कुछ। लेकिन जब से बाबा को ये ज्ञान मिला, बस पार्टनर को बोला हिसाब किताब कर दो, और बाबा का नया जीवन प्रजापिता ब्रह्मा जो बाबा ने नाम दिया वो शुरू हो गया। तो हमें भी सबको ब्रह्मा के कदम पर कदम रख के चलना है ना, तभी तो संपूर्ण बनेंगे। तो एक हम ये अंदर झांकें कि मेरा कितना पुराना जन्म, पुरानी बातें, पुराने संबंध भूलते जा रहे हैं, और नया मैं कितनी आत्मा आगे बढ़ती जा रही है। दूसरा, शुरू में बाबा ये जब 61-62 में मुरली चलती थी, अक्सर मुरलियां यही होती थी, आपने सुना है बच्चे, देखो कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो उसका विकर्म बनता है। हाँ मनसा में तूफान अंत तक आएंगे, मनसा वाचा में, लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं करना है, मनसा का कोई विकर्म नहीं बनता। फिर धीरे धीरे और 2-3 साल बाद 1965-66 में हम लोग जो बाबा की मुरलियां चलती थी और गुह्यता में बाबा लेते गए कि बच्चे अगर मुंह से भी कोई ऐसा कटु वचन निकला, किसी को दुख हुआ, किसी को दुख दिया, तो दुखी होकर मरेंगे, यानी वाचा तक बाबा ले आए। और अंतिम हमें याद आता है, अंतिम 1-1.5 वर्ष में तो बहुत जो मुरलियां चली उनमें अधिकतर यही होता था कि मनसा में भी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए, मनसा ही नहीं, स्वप्न में और वृत्तियों में, उसमें भी पवित्रता की पराकाष्ठा होनी चाहिए। तो बाबा देखो स्थूल से किस तरह इतने सूक्ष्म मनसा और वृत्तियों तक, स्वप्न तक भी बच्चों को ले आया। तो ये हमें देखना है, और इसका अनुभव हमने क्या किया, क्योंकि शॉर्ट में सुनाना है। तो जब 18, वैसे तो ये भाग्य तो मिला, बहुत बच्चों को भाग्य की साकार में पालना लेने का सौभाग्य मिला 7-8 साल। लेकिन सबसे बड़ा भाग्य जो हम समझते हैं हमें भगवान ने दिया, वो ये कि अंतिम 2 दिन में बाबा ने अपने पास बुला लिया। वो भी बहुत बड़ा इतिहास है। हम आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पास करने के बाद 67 में, तो आसाम में पोस्टिंग हुआ तो वहां थे, लेकिन बाबा ने कैसे अंतिम 2 दिन अपने पास बुला लिया, और हम 17 जनवरी की सुबह बाबा के पास पहुंच गए, और 17 और 18 जनवरी 1969 बाबा के साथ रहने का जो मौका मिला, उसमें बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था जो देखी, उसके और कुछ पॉइंट में हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी को भी कर्मातीत बनना है, यही हम सबका लक्ष्य है ना। तो पहली बात जो हमने खास देखी कि पहले जब भी मिलते थे बाबा कहते थे सबसे पहले शुरू में कि अपना जीवन कहानी लिख करके दो 61-62 में, और जब जाते थे बाबा कम टाइम की, हाँ बच्चे नटशेल में समाचार सुना दो, और जब 17-18 जनवरी को हम बाबा से मिले तो बाबा के सम्मुख जाते थे, बस खड़े हुए, बाबा ने दृष्टि दी, और दृष्टि देकर बाबा कहते बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन की बात भी जैसे बाबा तुरंत ही पढ़ के उसका समाधान दे देते थे। ये है कर्मातीत अवस्था की आत्मा का एक मुख्य लक्षण, जो कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जिसने मन जीत लिया होगा वो ही जगत जीत बन सकता है। बाबा तो जगत जीत की स्थिति प्राप्त कर चुका था, मन जीत चुका था, और इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, बिल्कुल उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही देखने को मिलता था कि जो बाबा के सम्मुख जाता था बस बाबा के ने बात मन की पड़ी और तुरंत समाधान दे दिया। हमें याद आता है 18 जनवरी की रात्रि क्लास हिस्ट्री हॉल पांडव भवन में बाबा मुरली चला रहे थे, हम भी सम्मुख बैठे हुए थे, 20-25 लोग होंगे, ज्यादा तो थे नहीं, जनवरी का महीना था और एक कुछ पार्टी और 4-5 लोगों की बाहर की थी हरियाणा की, और बाकी हम लोग दो थे, हम और हमारे लौकिक पिताजी, हम दोनों वहां पर बाबा के पास 17 जनवरी को पहुंच गए थे, मुरली सुन रहे थे। अब देखो मुरली सुनते सुनते ही ना हमारे मन में संकल्प आया, क्या संकल्प आया, बस बाबा कुछ और ऐसी बात बोले जो कि हमारे लिए और मार्ग प्रदर्शना बन जाए, और मन में बस यही भाव था बाबा नाम लेके कुछ बोले, मुरली तो चलाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे मन में संकल्प उठा, अब वो तो कर्मातीत अवस्था की आत्मा थी बाबा, बाबा तक एकदम संकल्प पहुंचा, और जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि भक्त के मन में इच्छा हुई तो और भगवान तक पहुंची, भगवान के मुंह से क्या निकलता था, बस तथास्तु, एक शब्द निकलता था और तुरंत भक्त की इच्छा पूर्ण हो जाती थी। तो जब भक्ति मार्ग में ये हम लोगों की इच्छाएं पूर्ण करी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा वो तो परमात्मा समान बाप समान बन चुका था, कर्मातीत अवस्था को पा चुके थे, तो जब भक्ति मार्ग में उन्होंने हम बच्चों की अनेक अनेक इच्छाएं पूर्ण की हैं, तो ये तो साकार में सम्मुख भगवान बैठा हुआ था, इसीलिए जैसे ही संकल्प किया तुरंत संकल्प बाबा तक पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए जो कि हमारे जीवन का हमेशा के लिए सदाकाल के लिए एक मार्ग प्रदर्शना बन गया। तो देखो एक कर्मातीत अवस्था की आत्मा का ये लक्षण महान होता है कि बस अंत तक उसकी अपने संकल्पों के ऊपर इच्छाओं के ऊपर पूर्ण रूप से विजय हो जाती है, और जो भी आत्माएं उनके सम्मुख आती हैं तुरंत उन आत्माओं की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम भी अपने को चेक करें ये कि क्या मैं इस दिशा की ओर आत्मा बढ़ती जा रही हूं, अपने संकल्पों के ऊपर अपने इच्छाओं के ऊपर मेरी विजय होती जा रही है, जो कि मेरे सम्मुख कोई भी आए आत्मा और मैं उसकी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। और ये तब हो सकेगा जब मेरे अंदर संकल्प नहीं होंगे, क्योंकि अगर मेरे मन में अपने संकल्प हुए तो मेरे सम्मुख जो आत्माएं आएंगी मेरे संकल्प उसके संकल्पों से मिक्स हो जाएंगे, और फिर हम उसकी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे। इसीलिए अंत समय के लिए हमें अभी से ये तैयारी करनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत समय से ये तैयारी करते आ रहे थे कि इच्छा मात्रम अविद्या, मन जीते जगत जीते, संकल्पों के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण, एक ये प्रत्यक्ष देखा उसका प्रमाण बाबा का। और हम अपने अंदर ये भी चेक करें कि इस दिशा की ओर मेरे कितने कदम बढ़े हैं और कितना अभी बाबा से दूर है। और इसके लिए एक बहुत बात अच्छी है, जरूरी है, हाँ, जो अक्सर करके हमारी दादियां वगैरह भी सुनाते हैं, आपने भी सुना होगा कि जब संदेशियां ध्यान में जाती थीं तो बाबा अक्सर करके पूछा करते थे, हाँ बच्ची, वो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को देखते हो ना, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को, तो अब देख के बताना कि उसमें और मुझ में, यानी कि मैं यहां पर साकार में हूं, कितना अंतर है। क्योंकि बाबा का लक्ष्य हमेशा ये रहता था कि मुझे वैसा बनना है संपूर्ण। तो संदेशी जब जाती थी और आती थी बताती थी, बाबा शकल सूरत सब वो है, वही है, लेकिन जो वहां सूक्ष्म वतन में देखा उनमें बहुत प्रकाश है, तेज है, और अभी वो जो है उसकी तुलना में आपका प्रकाश कम है। तो बाबा का हमेशा ये लक्ष्य रहता था कि बस मुझे वैसा बनना है। हमेशा अपना जो लक्ष्य वो सदैव बुद्धि में रहता था। और हम सब ने पढ़ा, इसीलिए बाबा के अज्ञान काल में भी नारायण का चित्र पॉकेट में रहता था, बाबा बार बार देखता था, अज्ञान काल में भी खुश होता था और ज्ञान में तो बस बाबा का वही लक्ष्य था। तो इसी रीति से हमें भी अपने संपूर्ण, बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा था, व्यक्त मुरली में, हम सब बच्चों का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में जैसे है, हमें उससे अपने को तुलना करनी है, देखना है योग में जाकर कि उस संपूर्ण स्वरूप में और मुझ में कितना अंतर है, और उसके अनुसार हमें अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। और हमें याद है, हाँ, 18 जनवरी को जब बाबा ने मुरली चलाई, मुरली के बाद बाबा गए और शरीर बाबा ने देह त्याग किया, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी थे, दादी जी ने संदेशी को भेजा, जाओ वतन में देख के आओ, पूछ के, क्योंकि किसी को विश्वास तो हो नहीं रहा था कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो वो संदेशी पहले तो कई देर तक, कई 3-4 बार तक जा ही नहीं सकी ऊपर, क्योंकि बाबा ने खींचा ही नहीं। और जब बाबा ने खींचा तो उसने जाके देखा, तो संदेशी ने बोला था, हमें याद है, कहती थी, बस मैं तो देखती रही, बाबा, दो ब्रह्मा बाबा सामने बैठे हुए और बिल्कुल दोनों का एक जैसा स्वरूप, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी कि कौन सा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है और कौन से साकार बाबा ब्रह्मा जो यहाँ आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी, साकार ब्रह्मा बाबा ने भी वही स्थिति प्राप्त कर ली थी और बिल्कुल एक जैसा स्वरूप दोनों का। तो एक ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे भी अल्टीमेटली ऐसा बनना है। चौथी बात, उस दिन देखा, हाँ, जैसा हम लोगों ने सुना ईशु दादी से भी, कि उस दिन बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, आज जो भी पत्र लिखाने हो वो पूरे पत्र लिखा लो, कोई भी काम पेंडिंग ना रहे, जो बाबा कहता है ना, सारे एवर रेडी। और उसके लिए वो भी, और हमारा नक्की लेक के पास म्यूजियम है, वो भी एक दिन पहले बाबा ने उसका फाइल पर भी साइन किया था कि हाँ बच्चे वो मकान ले लो, आबू में जो नक्की लेक में म्यूजियम है ना, उसकी बात। और बस दादी को बोला, जो भी मेरे, जो भी जिसके भी पत्र आए हैं सबके उत्तर लिखवा लो। तो इसका मतलब बाबा को आभास हो गया था कि बस आज जैसे ये मेरा अंतिम दिन है और इसके बाद मुझे ये शरीर छोड़ना है, जो कि गायन है ना भीष्म पितामह का, इच्छा जो कि क्या, इच्छा मृत्यु का। बस ऐसे ही बाबा का, जैसे उस दिन सारे कार्य किए और बाबा ने उस दिन, रोज मुरली होती है मधुबन में लगभग 9:15 रात्रि को, रात्रि क्लास, लेकिन उस दिन बाबा ने बस 7 ही बोला, एक हमारे जमुना प्रसाद भाई हैं, उनका, उनको बुला करके कि भाई सबको अनाउंस कर दो आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, घंटा रहता था वो बजा के सबको बता दिया आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सब लोग बस 7:30 तक भोजन वोजन करके आ जाए। सब लोग भोजन वगैरह करके आ गए और 7:30 बाबा भी क्लास में आ गए। तो देखो, बाबा भी उस दिन क्लास प्रीपोन की, पहले करी, क्योंकि अगर अपने नियत समय पर करते वही रहता तब तो बच्चों से मिल नहीं पाते थे। और उस दिन सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी, क्लास में आए थे, सिर्फ योग कराया था और योग में ही बच्चों को बहुत बल भरा था, शक्ति भरी थी, एक एक बच्चे को बाबा दृष्टि देते थे और बार बार बाबा की दृष्टि प्रकाशमणि दादी, कुमार का दादी की तरफ आ जाती थी और बाबा बार बार उन्हें विशेष बल और शक्ति देते थे। तो बाबा ने पहले ही प्रीपोन करा लिया और उस दिन बाबा क्लास में आए। अब वैसे बाबा को थोड़ा उम्र 93 ईयर एज थी, खांसी भी आती थी कई बार, कभी कभी, तो अक्सर करके हंसी में बाबा कहा करते थे, मैं देखो शिव बाबा को कहता हूं, बाबा ये जो मेरी बहुत क्लोज सखी है खांसी, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, बहुत परेशान करती है। तो बाबा, शिव बाबा क्या कहते थे, बच्ची बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तो तुम्हें ही चुकतू करना है, बाबा इसमें कोई कंसेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बाबा तुमसे कंसेशन करे तो सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी के साथ बाबा को कंसेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो कर्म करेगा उसी को ही तो हिसाब किताब चुकतू करना है, तो तुम्हें ही ये हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए खांसी को अपना उसका हिसाब किताब खुद चुकतू करो। तो देखो कैसे बाबा करता था, हमें याद है कई बार जब बाबा को खांसी आती थी, हमें मुरली चलाते चलाते भी हमें लगता था जैसे बाबा को कष्ट हो रहा है, कभी कभी आंख भी जैसे गीली सी होने लगती थी। तो जैसे खांसी आई, बाबा के पास ट्रांसलाइट का एक पिक्चर रहता था लक्ष्मी नारायण का और श्री कृष्ण का, तो बस बाबा देखते थे, ओ बच्चे देखो कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, वहां शरीर भी प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, तत्व भी सतो प्रधान, नया शरीर मिलेगा, अभी तो देखो यहाँ पुराना शरीर है, ये खांसी और दूसरी व्याधियां होती हैं, वहां तो कुछ भी नहीं होगा बच्चे, और वहां तो बस खुशी होनी चाहिए, कल मैं जाके देखो ऐसा बनूंगा, तुम बच्चों को भी ऐसे खुशी होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। बाबा कभी कभी करके दिखाता था, देखो खग्गियां बच्चे मालूम है कैसे, ऐसे ऐसे खग्गियां मारते हैं, इतनी खुशी हो कि बस पुरानी सब बातें सब हिसाब किताब भूल जाए। तो देखो कितना जो खुशी में, तभी तो बाबा की कितनी मुरलियां, कल भी बाबा ने बोला ना खुशी, तो खुशी में साकार बाबा की भी मुरलियां, इतनी व्याधि इतनी उम्र तकलीफ होते हुए भी बाबा की जैसे खुशी कभी गायब नहीं होती थी, और ये बस ये होता था, और इसी कारण से बाबा जैसे धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और 18 तारीख की रात की मुरली में वंडर एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, जबकि तबीयत भी पूरा ठीक नहीं थी, सर्दी का मौसम था बहुत, लेकिन एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, और वो इस कफ गला साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी ना, तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। और बाबा की कर्मातीत अवस्था हो चुकी थी, कई बार बाबा ने कहा है अगर कर्मातीत अवस्था हुई और तुरंत शरीर छोड़ा तो क्या फायदा, उसका कुछ समय अनुभव तो करना चाहिए ना, तो कर्मातीत अवस्था का बच्चे कुछ समय अनुभव भी करेंगे कर्मातीत अवस्था क्या होती है। तो एक बार भी रात्रि क्लास में बाबा को न खांसी आई न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, जो शरीर के सब कर्म भोग चुक्तु होने का प्रमाण है योग बल के द्वारा। और बाबा ने मुरली चलाई बड़े प्रेम से, और उसके बाद अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कह के बाबा खड़े हुए, बस खड़े होके चलने को हुए एक कदम बढ़ाया, फिर बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, काफी देर तक बाबा ने दृष्टि दी, फिर बाबा एक कदम बढ़ाया फिर रुक गए, फिर पलट करके फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। उस दिन जैसे बाबा को ये हो कि आज मैं बस, क्योंकि बाबा को ये आभास हो गया था कि ये मेरा अंतिम साकार मिलन है इस देह के अंदर, और मैं अंतिम बार जैसे बच्चों से जैसे नयन मुलाकात करके विदा ले रहा, तभी तो बाबा ने कहा दरवाजे के पास पहुंच के लास्ट, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है विदा लेता है, ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, 33 वर्षों में कभी नहीं, उस दिन ही बाबा ने ये शब्द बोले अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, ये कह के बाबा गए। और जैसे हम सब ने सुना है दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी के हाथों में हाथ नैन मुलाकात करते बाबा ने विदा ली, छुट्टी ली। ऐसे ही जब हम सब भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे तो हमें भी अनुभव होगा कि जैसे मेरे भी शरीर के सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, कर्म भोग लगभग चुक्त हो गए हैं और मैं आत्मा, जैसे अब बस शरीर से सारे हिसाब किताब चुक्त हुए, अब मैं आत्मा ये वस्त्र बदलने जा रही हूं। ब्रह्मा बाबा से ये बिल्कुल स्पष्ट आभास हुआ उस दिन। और क्या अनुभव हुआ, जैसे ही बाबा ना वहां से बाबा ने का शरीर छूटा और उस किसी को विश्वास ही नहीं हो, बार बार दादी जी संदेशी को भेजते थे, संदेशी कुछ समय के बाद गई और जैसा मैंने बताया शिव बाबा ने कन्फर्म किया, हाँ बाबा ने बच्चे को बुला लिया। लेकिन ये आश्चर्य देखा कि बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात को छूटा, 18 जनवरी की पूरी रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की सारी रात, 20 तारीख का सारा दिन, 20 की रात और 21 तारीख को दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी जी का और बच्चों का इंतजार हो रहा था, सबके टेलीग्राम आ रहे थे, फोन आ रहे थे बार बार कि रखो शरीर को, हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और बड़ी दीदी भी, मनमोहनी दीदी भी पहुंच गए, जिनके नाम पर मनमोहनी वन रखा है ना बड़ी दीदी, और उनके आने के बाद फिर जैसे कि संस्कार किया गया। लेकिन आश्चर्य ये कि न तो बाबा के शरीर में कोई इंजेक्शन लगाया गया, न कोई केमिकल लोशन, कोई दवाई का लेप किया गया, कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ और शरीर में काफी हद तक जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसे थी, काफी हद तक, नहीं तो आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ के जाती है शरीर तुरंत ही जैसे स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है कुछ घंटों में ही। लेकिन इतने 65 घंटे तक भी शरीर लगभग रखा रहा, लेकिन वो ही चमकता, न कोई काला पड़ा शरीर, न कोई शरीर में अकड़न जैसी हुई, न कोई दुर्गंध आई, कुछ नहीं, बस ऐसा। ये है बाबा का प्रकृति जीत बनने का प्रतीक, कैसे बाबा प्रकृति जीत बन गया था, 5 तत्वों से बना ये शरीर है ना। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से भी चाहता है, आप बच्चे भी माया जीत के साथ, मन जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो, 5 तत्वों के ऊपर भी आपकी विजय हो। थोड़े दिन पहले भी ये मुरली चली थी ना, बच्चों को 3 मेडल वरदान में था ना, 3 मेडल लेने हैं अपने से, दूसरों से और प्रकृति से। तो ये प्रकृति को भी हमें लगातार शुभ भावना, शुभ कामना, प्रकृति के साथ वार्तालाप करते रहना है और प्रकृति जैसे गुण धारण करते रहना है, तो क्या होगा, ये प्रकृति अंत में हमारा संपूर्ण सहयोग करेगी। प्रकृति के कारण हमें भले प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी, अर्थक्वेक आएगा, भूचाल और फ्लड आएगा, सूखा पड़ेगा, सुनामी होगी, आकाश से एटम बम वगैरह वो सब होंगे, लेकिन साथ ही साथ सूर्य से बहुत गर्मी, अति वृष्टि सब कुछ होगी, लेकिन ये प्रकृति भी हमें कर्मातीत बनने में सहयोग करेगी। कब, जब हम प्रकृति के साथ अपनी मित्रता कर लेंगे, प्रकृति के जैसे गुण धारण कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जल जैसा हमने गुण धारण किया होगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी, जल का सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट, गिलास में लो गिलास की तरह एडजस्ट हो जाता है, कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली में, चम्मच में लो चम्मच में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे यदि हमने भी अपना एडजस्टमेंट का गुण धारण किया होगा, हर एक के साथ एडजस्ट होकर हम चल सकते हैं, किसी के साथ कभी कोई शिकायत नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, मन भेद कुछ नहीं हो, लेकिन उससे क्या होगा, हमने जल जैसा गुण धारण कर लिया, तो ये जल जो है हमें संपूर्ण बनाने में मदद करेगा। जल जो है हमारी मृत्यु का दुख अशांति का कारण नहीं बनेगा, बल्कि जल हमें संपूर्ण बनाने में सहयोगी होगा। इसी तरह धरती की तरह, धरती का सबसे बड़ा गुण है दातापन का। धरती देती है, एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। ऐसे हम भी दाता बन जाएं, कोई भी हमारे सामने आए हम उसे खाली हाथ ना भेजें। स्थूल चीज नहीं, लेकिन सूक्ष्म प्रेम शक्ति आनंद की जो आत्मा की शक्तियां, शांति आनंद पवित्रता प्रेम सहयोग सद्भावना, ये सबके इतने वाइब्रेशन हो, ऐसे हमारे मुंह से बोल हो, ऐसे हमारे ऑरा हो कि वो आत्मा खाली हाथ ना जाए, इन गुणों से भरपूर होके चली जाए। तो अगर दातापन का ये गुण होगा तो धरती में जितने भी भूकंप आएंगे, जितना हिले, बहुतों का मृत्यु का अशांति का कारण बन जाए, लेकिन हमें उससे पहले ही ऐसा टचिंग होगी, हमारे कदम उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। और इसके लिए बाबा ने कहा, दुनिया में जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, आपका वॉइसलेस यानी निर्विकारी कम्युनिकेशन हो, वॉइसलेस, तो क्या होगा, आप उस वॉइसलेस दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे ही वायु की तरह, वायु की तरह, वायु में क्या गुण है, हल्का रहने का। बस ऐसे ही हमारे सामने जीवन में पेपर आएंगे, परीक्षाएं होंगी, लेकिन हम कभी भारी ना हो, हल्के रहना सीखें। और जितना हम हल्के रहेंगे वायु की तरह, और हल्की चीज हमेशा ऊपर उठती है, तो जितना वो ऊपर हम हल्के रहना सीखेंगे, ऊपर उठते जाएंगे, उतना क्या होगा, जितना भी वायु के तूफान आएंगे, साइक्लोन आए, टॉर्नेडोज आए, जितने भी पवन अगर 200-300 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलेगा, तो भी हमारे मृत्यु का दुख अशांति का कारण नहीं बन सकता। वो पवन जो है हमें संपूर्ण बनाने में सहयोग देगा। ऐसे ही आकाश का सबसे बड़ा गुण है विशालता। ऐसे ही हमारे हृदय में इतनी विशालता हो, किसी की कमी कमजोरी हम अपने अंदर धारण ना करें, उसकी कमी कमजोरी दिखे ही नहीं। जो हम दादियों में भी देखते हैं, बाबा में भी देखते थे, कितना को आज हमने बड़ी दादी में कितनी बार देखा, कोई भी आके कोई बात कह गया, अपमान भी कर दिया, दूसरे ही क्षण दादी एकदम भूल जाते थे, और आओ उसको नाम लेके या प्रेम से बैठा के बिल्कुल जैसे वो बात हुई नहीं, और दूसरे को अंदर ही अंदर इतना अंदर पश्चाताप जैसा होता था कि दोबारा वो गलती न करने का संकल्प लेता था। ऐसे ही आकाश की तरह विशालता, और वो मतलब है क्षमा करने का गुण हम दूसरे को। तो ये है तत्व जिनसे कि हम अपने को भरपूर करते चलें। इसी तरह गर्मी सूर्य का गुण है अंतिम तत्व का, कि अग्नि में कोई चीज डालो वो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, आपका ऐसा योग का स्वरूप हो, वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग, कि कोई भी आत्मा आए, रोती हुई आत्मा आए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, हंसती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए, हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती जाए। तो ये बाबा का संपूर्ण स्वरूप हमने जो देखा, आज आपके साथ शेयर किया, और हमें आशा है हम सब जो इसी मार्ग के राही हैं, हम सब भी इसी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त करके ही रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच बाबा के कदम पे कदम रखना, कुछ समय पहले मुरली आई थी तो किस प्रकार रखना है, बहुत सरल सहज भाव में आपने समझाया। भ्राता जी का तहे दिल से धन्यवाद। अभी एक छोटी सी बच्ची का डांस होगा तो सभी बैठे रहेंगे, थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पर बाबा के बहुत सारी सीरीज में रिलीज की है ललित गुरवारा जी, बहन नेपेंसी रोड मुंबई से हैं, और उनका एक गीत अभी सुनेंगे और बाबा को साथ साथ याद करेंगे। ललित गुरुवारा जी।
ओम शांति, ओम शांति। तेरी प्रेम दीवानी बाबा, तुझसे मिलने आई। तेरी प्रेम दीवानी बाबा, तुझसे मिलने आई। देह दुनिया को छोड़ के बाबा, तुझसे लगन लगाई। मेरे बाबा के तेरा बाबा चलूं, जैसे दिया और बाती। मेरे बाबा बसे हैं, मैं तो तुझ में समाई। मेरे बाबा रोम रोम में तू ही बाबा, मेरे बाबा बाबा शांति।
अब एक छोटी सी नन्ही बालिका अपनी छोटी सी प्रस्तुति हमारे सामने रखेंगी, कुमारी अन्नु करनाल से।
बादलों की मैं
जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सोजत सिटी से धर्मेंद्र सिंह जी एक स्वरचित कविता आपके सामने रखेंगे उस एक गीत के रूप में। धर्मेंद्र सिंह जी।
बाबा है बच्चों का प्रेम इन्हें कर लो ले लो दर्द मेरे ये सूल शांत कर लो। खुश होता है तन मन ज्ञान के मिलने पर पाप भी जलते हैं पवित्रता के आने पर। आसी है आत्मा जो आनंद के लिए तरसे बैठे ही मन मेरा साइलेंस को तरसे। लाइट और माइट लिए फरिश्ता बन उड़ लो। अंधकार भी दूर हुआ परमात्मा के आने पर। कलयुग को भुला देना आए हो जो संगम पर। सतयुग में आवे हम सतयुग में आवे हम श्याम मिलन कर लो। बाबा है बच्चों का प्रेम इन्हें कर लो।